श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 21 श्लोक संख्या 16 दिनांक 25 अप्रैल 2015 स्वीकार कमलचंद प्रभु।
आतपे सूर्य की भरी गर्मी से व्रज पशुन व्रज के पालतू पशु सह साथ साथ राम गोपैः बलराम तथा ग्वालों के संचारयन्तं चराते हुए अनु बारंबार वेणुं वंशी उदीरयंतम तेजी से बजाते हुए प्रेमा प्रेमवश प्रवृद्धः बड़ा हुआ उदितः उठकर कुसुमावलिभिः फूलों के समूहों से ओस के कणों से युक्त सख्युः अपने मित्रों के लिए व्यधात बनाया सो वपुषा अपने ही शरीर से अम्बुदः बादल ने आतपत्रम छाता। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद भगवान कृष्ण बलराम तथा ग्वालों के संग में व्रज के समस्त पशुओं को चराते हुए ग्रीष्म की कड़ी धूप में भी निरंतर अपनी बांसुरी बजाते रहते हैं। यह देखकर आकाश के बादल ने प्रेमवश अपने को फैला लिया है। ऊंचे उठकर तथा फूल जैसे असंख्य जल की बूंदों से अपने बने अपने मित्र के लिए अपना ही शरीर से छाता बना दिया है। ओम ज्ञात विरंदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन गुरुतले रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणदलिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौरङ्गि राधे वृन्दावनेश्वरि ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वेणुगीत हम चर्चा कर रहे हैं। वैसे वेणुगीत में जो गोपियों की गोपियों के द्वारा उच्चारण किया जाए श्लोक है उसके पीछे बहुत अनेकों अनेकों रहस्य हैं। खास करके गोपियाँ किस प्रकार भगवान का स्मरण कर रहे हैं। अभी वैसे तो घने जंगल के अंदर पहुँच गए भगवान, अभी कृष्ण बलराम अन्य ग्वाल बाल पहुँच गए। अभी जंगल के जो प्रवेश मार्ग होता है उधर ही सब गोपियाँ बैठ के ये श्लोकों को उच्चारण कर रही है। पहली बार हमने शुरुआत में हमने सुना कि इस प्रकार गोपियों ने कहा, सारे अन्य गोपियों, एक गोपी ने अन्य गोपियों को कहा चलो जाके कृष्ण को देखेंगे। कैसे देखेंगे? पत्तों के बीच में से हम देखेंगे उनको। तो अभी पत्तों से बीच में देखते देखते सारे ग्वाल बाल कृष्ण बलराम बांसुरी बजाते हुए जंगल के अंदर जब चले गए तो ये गोपियाँ अभी स्मरण कर रही है चित्र। हाँ, चित्र विचित्र कहा जाता है इसको, मतलब विचित्र मतलब क्या है? पिक्चर। विचित्र मतलब क्या है? तो अलग अलग प्रकार के चित्रों को स्मरण करते हुए प्रेम को व्यक्त करना, प्रेम को अनुभव करना, इसको चित्र विचित्र कहा गया है। तो ये चित्र विचित्रों को वो स्मरण कर रही हैं। वैसे देखा जाए तो ये प्रकार का पागलपन होता है, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मदमत्त हो जाना। नंदेन मत्तालिको, गोपियों को कहा गया है कि वो कृष्ण के प्रेम में एकदम बिल्कुल मदमत्त हो गए। तो कृष्ण प्रेम ऐसा चीज़ है जो सबको मदमत्त करने वाला है। स्वाभाविक तरीके से जो कृष्ण प्रेम का आस्वादन करता है वो मदमत्त होता है। उनकी जो बातों में, उनके सोच विचार में कोई भी मेल जोल नहीं रहता है। वो कुछ भी स्मरण करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। अभी गोपी गीत में भी उसी प्रकार हम देखते हैं कि गोपियाँ वो स्मरण कर रही हैं और कुछ भी चीज़ को देख के किसी न किसी तरीके से स्मरण कर लेती हैं। भले ही इसके पीछे हम कहते हैं कि गोपियाँ मदमत हो के कुछ भी बोल रही हैं, उसके पीछे गहरा विज्ञान है। भक्ति जो है वो बह गहरा विज्ञान है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद इस भक्ति का विज्ञान का वर्णन करते हैं। सबसे पहला उन्होंने साधन भक्ति का विज्ञान का वर्णन किया, बाद में भाव भक्ति, बाद में प्रेम भक्ति का विज्ञान का वर्णन किया। तो गोपियाँ जो अनुभव कर रही हैं इन भावों को अनुभव करते हुए इन इन श्लोकों को उच्चारण कर रही हैं, इसके पीछे एक बड़ा गहरा विज्ञान है, भावनाओं का विज्ञान है। किस प्रकार की भावना? जो कृष्ण प्रेम में मदमत हो चुके हैं वैसी भावनाओं का विज्ञान है। भक्ति रसामृत सिंधु में उसका बड़ा अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है और विदग्ध माधव इत्यादि ग्रंथों में रूप गोस्वामी पाद ने उसको और विस्तार से वर्णन किया है। अभी एक ऐसा स्तर होता है प्रेम में जहाँ अभी जिससे आप प्रेम करते हो वो आपके सामने नहीं है, लेकिन अन्य जो लोग हैं जो उन जिससे आप प्रेम करते हो ये स्मरण करते हुए किस प्रकार अन्य लोग आपकी प्रेम, आप जिससे प्रेम कर उनके साथ कैसे अनुभव कर रहे हैं, प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं, ये सोचते हुए एक प्रकार का अनुभव करना। क्या अनुभव करना? मैं कितना, हम कितना दुर्भाग्य है देखो, ये कितना इनका सौभाग्य देखो, इन लोगों का सौभाग्य देखो, कृष्ण का सांगित्य प्राप्त हो रहा है हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये विचार करना एक प्रेम का एक स्तर होता है, यानी अपने आप को बड़ा दुर्भाग्य मानना, दुर्भाग्यशाली मानना और ये सोचना कि वो कितने भाग्यवान हैं जो कृष्ण के सांगत्य में हैं, कृष्ण के संगति में हैं। एक प्रकार का शोक व्यक्त करना, पता नहीं हमारा दुर्भाग्य देखो किस प्रकार का है, कृष्ण हमारे सामने नहीं है, वो कितना भाग्यशाली है देखो, कृष्ण की संगति प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार शोक का अनुभव करना एक प्रेम का लक्षण है। शोक जो है वो दिव्य श्लोक है जो गोपियाँ पिछले दो श्लोकों के से अनुभव कर रही हैं और अगले वाला कल वाला श्लोक में ये शोक की जो ऊंचाई है वो एक हद तक पहुंच जाता है, पूरा उसकी पूर्णता तक पहुंच जाता है। तो पिछले श्लोक में आपने सुना किस प्रकार गोपियाँ वो नदियों का स्तुति कर रही हैं, नदियों का भाग्य को स्मरण कर रही हैं और नदियों का भाग्य का स्मरण करते हुए अपना दुर्भाग्य को सोचते हुए शोक व्यक्त कर रही है। तो पिछले कल के श्लोक में आपने सुना, नद्यस्तदा तदुपधारय मुकुंद गीतम, मुकुंद गीतम उपधारय मुकुंद गीतम। इधर मुकुंद गीतम कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण के जो वेणु गीत है उसको मुकुंद गीत कहा है गोपियों ने। तो ये मुकुंद गीत को सुन के नदियाँ जो है उनका स्वभाव क्या होता है, नदियाँ उनका स्वभाव है समुन्दर की ओर प्रवाहित करना। अभी गोपियाँ स्मरण कर रही हैं, नदियाँ जो हैं वो स्त्री हैं और स्त्री का स्वभाव से रहता है उनका चित्त जो है उनकी पति की ओर भागता है और नदियों का पति कौन है, समुन्दर है। अभी कृष्ण की बांसुरी सुन के नदियों का प्रवाह रुक गया और क्या हुआ, उधर भवंदर होने लगे, उधर वहाँ गया, आवृत्य लक्ष्मी मनोभाव भोगन भगन वेग भग्न वेगा, वो वेग उनका भग्न हुआ और क्या हुआ, आवृत्त लक्षित मनोभव, तो उधर ही उधर घूमने लगे, घूमते घूमते पानी जो है भवंडर होता है ना, विलप्रुल्स होता है, और आलिंगन संगीतम ऊर्मि भुजैर मुरारे, और आलिंगन करने लगे। क्या जब कृष्ण नदी में अपना चरण रखते हैं और कृष्ण की चरणों को आलिंगन करते हुए, गृह्णाति पाद युगलम कमलोपहारा, गृह्णाति पाद कमलम, भगवान के जो चरण हैं पाद युगलम उनको गृह्णाति ग्रहण करते हुए नदियाँ क्या कर रही है, कमल पुष्प को अर्पण कर रही है। यहाँ कहा जाए कि भगवान कमल, कमल का और एक अर्थ है जल, जल के द्वारा भगवान की चरण कमलों को धो रही हैं। इस प्रकार देखो नदियाँ कितना आनंद को अनुभव कर रही हैं, नदियाँ ऐसे स्त्री जाति की होती हैं। तो इस प्रकार ये वेणुगीत में इतनी मधुरिमा है कि ये नदियाँ अपने जो सतीत्व है वो खो बैठी हैं और कृष्ण के प्रति इतना आकर्षण हो गया इन नदियों को और कृष्ण का सांगत्य प्राप्त हो रहा है। देखो हम कितना बड़े दुर्भाग्य हमारा, देखो कृष्ण का दर्शन भी नहीं हो पा रहा है, ऐसा सोचते हुए आज के श्लोक को उच्चारण करती है। आज के श्लोक में तुरंत गोपियाँ वो सोच रही है, ये देखो बादल, बादल कितने बड़ा सौभाग्य है, बादल जो हैं वो स्त्री जाति के नहीं होते हैं, बादल जो है वो पुरुष जाति के होते हैं। तो कृष्ण पुरुष हैं और बादल भी पुरुष हैं। गोपियाँ सोच रही है ऐसा ही नहीं, केवल जो माधुरी रस में भगवान की सेवा करते हैं उनका ही सौभाग्य है, हमारा इतना बड़ा दुर्भाग्य है। जो साक्ष्य भक्त है, साक्ष्य रस के जो भक्त है वो जो अनुभव कर रहे हैं वो अनुभूति भी हमको नहीं हो पा रहा है। इसलिए सख्युर व्यधात ये शब्द आया है, सख्युर मतलब फ्रेंड, सखा मतलब फ्रेंड, जो साथ में खाने वाला। तो कृष्ण को, बलराम को, अन्य गोपों को, सबको क्या लग रहा है, ग्वाल बालों को गर्मी लग रहा है, गर्मी का मौसम में गर्मी भी होता है और ऑटम का मौसम में गर्मी होता है, जैसे बारिश समाप्त होने के बाद भी गर्मी होता है, वो सितंबर अक्टूबर का जो गर्मी है ना वो बहुत भारी गर्मी होता है, बारिश के मौसम के बाद का गर्मी। तो ये गर्मी इतना भयानक रहता है, अचानक से गर्मी शांत हो जाता है, कैसे शांत होता है, बादल छा जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है दृष्ट्वा तपे, दृष्ट्वा मतलब देखे, किसने देखा, बादल ने देखा, बादल ने देखा, दृष्ट्वा तपे ये पूरा भयानक सा ये तप्त जो सूर्य का जो ताप है उसको देखे, व्रज पशुन किनके ऊपर था, व्रज पशुन सहारा मघोपही, व्रज पशुन व्रजों को, व्रज के पशुओं को कृष्ण बलराम और अन्य गोपों को इतना बहुत गर्मी लग रहा था। तो इसको देख के संचारयंतम अनुवेणुम उदीरयंतम, अभी ये अनुवेणुम उदीरयंतम, भले बहुत गर्मी है ये कृष्ण बलराम जो है बांसुरी बजाते हुए संचारयंतम घूम रहे थे जंगलों में, अभी इसको देख के बादल को ऐसा लगा नहीं मुझे कुछ करना पड़ेगा, मेरे मित्र जो है इतना दुखी हो रहा है, एक गोपी इस प्रकार सोच रही है, मेरे मित्र इतना दुखी हो रहा है, तो क्या करना है? प्रेम प्रवृद्ध उदित कुसुमावली भी, तो प्रेम से, प्रेम के आवेश में प्रवृद्ध, वो बादल जो है वैसे सारा बारिश गिरने के बाद बादल क्या होते हैं, वो क्षीण हो जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं, लेकिन प्रवृद्ध बादल जो है कृष्ण का ये बांसुरी सुन के, बांसुरी का आवाज सुन के, एक तो उनको दुख लगा कि बहुत गर्मी है, दूसरा है कृष्ण का और बांसुरी का आवाज सुनने मात्र से बादल क्या हो गया, प्रवृद्ध, वो विस्तार होने लगे, प्रेम में उनका विस्तार हो गया, उनका पूरा शरीर विस्तार हो गया। देखिए बादल का शरीर थोड़ी विस्तार होता है, अभी गोपियां इस प्रकार स्मरण कर रही है कि ये बादल जो है इतना अपना शरीर को ऐसा विस्तार करने लगे, तो क्या हुआ, विस्तार करके क्या करने लगे कि उदित कुसुमावली भी, वैसे बादल क्या प्रदान करता है, बारिश देता है, जो बारिश के बूंद होता है, गोपियां स्मरण करिए बारिश के बूंद किस प्रकार है, कुसुमावली भी, वो फूलों का जो कुसुम फूल होते हैं उसके बराबर उतला करते हैं, हाँ फूलों को गिरा रहे, बारिश के बूंद नहीं है, फूल गिरा रहे हैं। सक्युर वेदात स्व व पुषाम्बुदातपत्रम, आतपत्र मतलब छाता, छाता अम्बुदः ये जो बादल हैं, आतपत्रम बादल जो है छाता के रूप में खड़े हो गए, सूर्य का जो ताप है उससे बचाने के लिए बादल क्या हो गए, वो छाता बन गए, और बादल से बरसने वाला जो बारिश है, बारिश के बूंद है, और कुसुमावली भी वो फूल के बारिश जैसे हो गए, फूल फूल का बारिश होने लगा। इस प्रकार गोपियाँ चित्र विचित्र, चित्र विचित्राणी वो स्मरण कर रही हैं, चित्र कवित्वाणी, ऐसा अनेकों अनेकों चीज़ें हैं। चित्र कवित्वाणी मतलब क्या है, हमारे जो मन में हो रहा है उसको जो भी चित्र आ रहा है वो कवित्व के रूप में, यानी कवि के रूप में या कोई शब्दों के रूप में व्यक्त करना, ऐसा क्यों हो रहा है उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। जैसे एक पागल व्यक्ति है वो कुछ भी कहता है, वो जब कुछ भी कहता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। प्रेम में कोई व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, अच्छा भी कह सकता है, बुरा भी कह सकता है, कोई कुछ और कल्पना कर सकता है, कोई और की मन में नहीं आ सकता है। वैसे गोपियाँ वो विचित्र विचित्र बातों को स्मरण कर रही है, बादल थोड़ी ना पुष्प गिराता है, लेकिन गोपियाँ सोच रही है बादल देखो कितना प्रेम है उन कृष्ण के प्रति, कितना साक्य है देखो, तो साक्य क्यों हुआ बादलों को कृष्ण से, अभी गोपियाँ कहती हैं दोनों का वर्ण एक ही है ना, इसलिए फ्रेंड है। अभी व्यक्ति एक दूसरे से फ्रेंडशिप क्यों बनाता है, मित्रता क्यों बनाता है, जब कोई कॉमन चीज़ रहता है, कॉमन चीज़ मतलब दोनों के बीच में कोई ना कोई एक कॉमन होना चाहिए, तब वो दोनों का मित्रता हो जाती है। मान लें कि ट्रेन में किसी से मुलाकात हुआ तो पूछेंगे कि आप कहाँ से हो, मान लो कि आप वही गांव से हो जिस गांव से आप हो, तुरंत मित्रता हो जाती है कि नहीं, कॉमन फीचर। मान लो कि एक व्यक्ति ने उसी रंग का कपड़ा पहना तो अरे हम दोनों एक ही रंग का कपड़ा पहने, तो उसी प्रकार इधर गोपियाँ स्मरण कर रही है इन दोनों के बीच में साक्ष्य का अनुभव क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों का रंग एक है ना, देखो हमारा रंग और कृष्ण का रंग तो मिलता जुलता नहीं है, इसलिए कृष्ण का जो साक्य है उनका फ्रेंडशिप जो है बादलों से है, और बादलों का जो साक्य है फ्रेंडशिप जो है वो कृष्ण से एकदम बिल्कुल मेल जोल बैठ गया है। केवल फ्रेंडशिप जो है केवल उनके जो शरीर का रंग की वजह से ही नहीं, और साथ साथ में उनके पहने वस्त्र है। वो गोपियाँ की स्मरण करती है क्या वस्त्र पहने हैं, कृष्ण धोती पहनते हैं, कौन से रंग के धोती पहनते हैं, वो पीतांबर रंग के धोती पहनते हैं, और जब पीतांबर रंग के धोती पहनते हैं तो ये बादल सोचने लगे मैं बिजली जब चमकता है तो कौन सा वर्ण का होता है, वही रंग का होता है जो कृष्ण धारण किया, यानी बादलों का वस्त्र भी और कृष्ण के वस्त्र के साथ में मेलजोल करता है। इसलिए ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में पहले श्लोक में कहते हैं तडिडम्बराया, जो अभ्रवपुषे तडिडम्बराया, ब्रह्मा जी भगवान के जो शरीर है उसका तुलना करते हैं अभ्रवपुषे, वपु मतलब उनका शरीर किसके प्रकार है, किसके बराबर है, वो बादल के बराबर है, और अम्बराया आपके उनका जो जो वस्त्र है वो किसके बराबर है, तडिड जो जब बिजली चमकता है वो जैसे बादल वस्त्र पहनता है, बिजली जो है बादल का वस्त्र होता है, जब बिजली चमकते समय देखोगे तो बादल भले ही काले होते हैं लेकिन उसके ऊपर कुछ पार्ट में बादलों के ऊपर क्या होता है, वो पीतांबर वर्ण का वस्त्र प्रकाश या बिजली का प्रकाश गिरता है। तो इसलिए बादलों का वस्त्र जो है वो भी पीतांबर है और कृष्ण का वस्त्र भी पीतांबर है। और साथ साथ में जब बादल बिजली चमकता है तो क्या होता है, बादल में बिजली चमकता है साथ साथ में उसके बाद बादल जो है गरजने लगता है। तो ये गरजना किस प्रकार है, बादल की गरजना, बादल सोचने लगे हमारी जो गरजना है वो कृष्ण का बांसुरी के वादन के बराबर है, इसलिए तो हम दोनों के बीच में मित्रता है। ये मित्रता जो है वो हमारी ये तीन प्रकार की समानता है। सबसे पहला क्या है, कृष्ण का शरीर और बादल का शरीर रंग का एक ही है, कृष्ण का वस्त्र एक और बादल के वस्त्र दोनों एक ही जैसा है, और भगवान के जो बांसुरी हैं वो भी और बादल का गर्जना। अभी गोपियाँ और एक कदम आगे सोचती है, बादल क्या करता है, वो बारिश गिरा के सभी लोगों के मन में उत्पन्न हुआ या शरीर से उत्पन्न हुआ या दुख है ताप है उसको शांत करता है, लेकिन कृष्ण का शरीर कैसा है, कृष्ण का शरीर का जो सुंदरता है वो सुंदरता से उत्पन्न हुआ जो उत्पन्न सुंदरता से उत्पन्न हुआ जो अमृत है वो क्या करता है, भक्तों के हृदय में जो ताप है विरह ताप है उसको शांत करने वाला है। अभी गोपियाँ अपने आप के बारे में कह रही है, हमारे हृदय में जो ताप है विरह ताप है उसको शांत करने वाला शरीर है कृष्ण। लेकिन अभी वो कृष्ण किसके साथ में है, किसको मित्र मान के बैठे हैं, बादलों को मित्र मान के बैठे हैं। तो गोपियाँ कहती है, हंता क्या फायदा हमारा जीवन का, धिक्कार है हमारा जीवन का, इससे अच्छे मर जाए, हमारा जीवन जो है कोई किसका कोई फायदा नहीं है, हम इसके इससे अच्छा है कि हम नरक में चले जाएं। तो एकदम एक्सट्रीम मिजरी, ये जो दुख जो गोपियाँ अनुभव कर रही है वो आध्यात्मिक दुख है, इट इज़ ए स्पिरिचुअल मिजरी। वो आध्यात्मिक दुख में अपने आप को निंदा करती है, किस प्रकार कहती है, धिक्कार है हमारे ऊपर, सांख्य रस के एक बादल भी कृष्ण को अपना मित्र मान के सेवा कर रहा है, हम जो है कोई काम के नहीं रह गए, क्या फायदा हमारा जीवन जीने का कि कृष्ण को सेवा करने का मौका प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसा गोपियाँ इस प्रकार विचार कर रही है। तो ये श्लोक जो है बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ये गोपी गीत में, जिसमें गोपियों की मन में जो कृष्ण प्रेम है वो प्राप्त नहीं होने के कारण जो व्यथा को अनुभव कर रही है वो इधर व्यक्त हो रहा है। अभी जब इस प्रकार की तीव्र शोक मन में उत्पन्न होता है, उस शोक में अभी क्या जिस किसके बारे में बोल रहे हैं वो भी भूल जाते हैं, अतीव शोक में विस्मृति होता है। अभी आप देखोगे अगले श्लोक में गोपियाँ क्या करती हैं, अभी चलो अभी कृष्ण की बांसुरी को भूल जाओ, क्योंकि कृष्ण की जो बांसुरी का जो आवाज़ है उसी से हमारे मन इतना मदमत हो गया है, अभी उसको भूलना चाहती है और भूल जाती है, या भूलना चाहती है और भूल जाती है अलग बात है। लेकिन अगले श्लोक में आप देखोगे 17वां श्लोक में कृष्ण की वेणु का वर्णन नहीं है, सीधा श्रीमती राधारानी के चरण कमलों का महिमा का वर्णन किया जा रहा है। तो कृष्ण की जो शरीर से उत्पन्न हुआ जो कुमकुम है वो कहाँ से है, वो राधारानी के स्तनों से है। वो क्योंकि राधारानी हमेशा सोचती है कि मेरे स्तन के ऊपर कृष्ण की चरण कमल हमेशा रहे, और राधारानी के स्तनों से उत्पन्न हुआ कुमकुम जो है कृष्ण की चरण कमलों में है, और कृष्ण जब चलते हैं तो क्या गोपियाँ सोच रही है, वो कृष्ण की चरण कमलों से उत्पन्न हुआ जो कुमकुम है वो उधर जंगल के जो आदिवासी जो स्त्रियां हैं उसको लेके अपने शरीर में अपने अपने चेहरे के ऊपर अब सजा रही है, और सजा के क्या कर रही है, बड़े संतुष्ट हो रही है, सुखी हो रही है। अब ये गोपियां सोचती है, देखो ये जो आदिवासी स्त्रियों को जो मिल रहा है सौभाग्य वो भी हमको दुर्लभ हो गया है। राधा रानी भी हमारे साथ में नहीं है, हमारा जीवन जीने का क्या फायदा। इस प्रकार अनेकों अनेकों श्लोकों में गोपियाँ अपने अपने भावों को व्यक्त कर रही है। चलिए अभी गोपियों का प्रेम का वर्णन हमें थोड़ा बहुत किया है इन श्लोकों से, तो हमारे जीवन में वैसे तो उस प्रकार की प्रेम की अनुभूति तो है नहीं। तो आचार्यों ने कहा है उस प्रकार का प्रेम की अनुभूति नहीं होने पर भी, लेकिन कुछ चीज़ों को अपने जीवन में प्रेम को प्रकट करने के लिए कुछ अभ्यास कर सकते हैं। क्या है वो अभ्यास? वैसे तो हम सब कहते हैं अभ्यास करो, जप करो, भागवत पढ़ो, भक्तों का संग करो, हाँ साधना के नियम को पालन करो। लेकिन साधना के कितने भी नियम को पालन करे, लेकिन अगर उसके साथ में एक महत्वपूर्ण भाव अगर स्वीकार नहीं करेंगे, साधना करते करते जाएंगे लेकिन कभी भी भाव या प्रेम प्रकट नहीं होगा। क्या है वो चीज़? एक बार श्री प्रभुपाद जी के पास एक भक्त गया, तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी शास्त्रों में लिखा है कि जब होता है, जब करते हैं तो आंखों में आंसू प्रकट होना चाहिए, तो वो तो होता नहीं है, तो क्या करें? तो प्रभुपाद ने कहा कि जब करने के समय आपको रोना नहीं होता है, आप रो, किसके लिए रो? रोना नहीं आ रहा है करके रोना, यू क्राई बिकॉज यू आर नॉट एबल टू क्राई। तो इधर गोपियाँ बड़े सर्वोच्च प्रेम की भाव में, कृष्ण हमको प्राप्त नहीं हो रहे हैं, कृष्ण का दर्शन नहीं मिल रहा है, ऐसे वो रो रहे हैं। लेकिन हम भी उसी प्रकार, या उस प्रकार की बात नहीं, उसी सिद्धांत को हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। क्या है? कृष्ण प्रेम कब प्राप्त होगा? इस प्रकार की जो स्थिति है, 24 घंटा कृष्ण में तल्लीन होना, उस प्रकार की जो स्थिति है वो कब प्राप्त होगा? कबे होबे आकुति, कबे होबे आकुति, रूप रघुनाथ पदे कबे होबे आकुति, कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। भगवान आपके नामों के प्रति रुचि कब होगा? वैसे तो रुचि नहीं है, रुचि होता तो आंखों में आंसू आता, तो रुचि नहीं है तो क्या करें? कब रुचि होगा? हमको रुचि की कब प्राप्त होगा? भगवान की या रूप रघुनाथ, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी जो रचना किए, उनके जो रचनाओं के प्रति आकुति कब प्राप्त होगा? तो ऐसा हम हमेशा स्मरण कर सकते हैं, कभी वो भी आपकी कदा तो नाम ग्रहणे भविष्यति। ऐसे रूप गोस्वामी के प्रणाम मंत्र में भी हम देखते हैं कि ददाति स्वपदांतिकम, हे रूप गोस्वामी पाद आप अपने चरण कमलों के पास कब रखोगे? ये जो शब्द है कब, कब, कबे, व्हेन इट इज गोइंग टू हैपन, ये खाली हृदय में इस प्रकार की भावना धारण करने मात्र से हमारे ये जो ताप है, भौतिक जगत से उत्पन्न जो ताप है, उससे तुरंत मुक्त हो सकते हैं, वी कैन गेट ओवर इट इमीडिएटली। वैसे गोपियाँ जो ताप को अनुभव कर रही है वो विरह ताप है। जो गोपियों के हृदय में जो विरह ताप है वो अलग है, और हमारे हृदय में जो ताप है वो अलग है। हमारे हृदय में जो ताप है वो किसकी वजह से है? तीनों तापत्र है, भौतिक शक्ति से उत्पन्न हुआ, प्रकृति से उत्पन्न हुआ ताप है। उससे अगर तुरंत मुक्त होना है तो क्या करना होगा? हमेशा ये बात सोचना होगा, हे भगवान आपका प्रेम कब प्राप्त होगा? जैसे गोपियाँ देखिए कितने तल्लीन होंगे कृष्ण प्रेम में, उस प्रकार की तल्लीनता मुझे कब प्राप्त होगी? ये स्मरण करना, ये बात को हमारी साधना में हमको डालना चाहिए। इसे छोटी सी एस्पेक्ट है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब उसको तो उस प्रकार के भाव को अपनी साधना में ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए जप करने के समय, या भागवत करने पढ़ने के समय, या कोई भी समय मंदिर में दर्शन करने के, भगवान का दर्शन करने समय, हे भगवान कब होगा ये बात, कब मैं मेरे अनर्थों से दूर हो जाऊंगा, कब ये हो, कब आपके प्रति प्रेम प्राप्त होगा, कब मुझे ये भागवत गीता समझ में आएगा, कब मैं आपकी पूरा समर्पण होकर सेवा कर पाऊँगा, सब अपने अपने तरीके से अपने अपने स्तर के अनुसार कब होगा, ये विचार बड़े दृढ़ता से अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। जैसे गोपियाँ अपने आप को हंता, अपने आप को मान रही है कि हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य, देखो जो सौभाग्य ये बादलों को प्राप्त हो रहा है, जो साक्य रस का पुरुष है, ये बादलों को प्राप्त हो रहा है कृष्ण के शरीर के ऊपर अपनी बारिश के जो बूंद फूल के समान है उसको बरसा रहे, वो सौभाग्य हमको प्राप्त कैसे होगा। वैसे आप देखेंगे कृष्ण करणामृत नामक ग्रंथ है, उधर कृष्ण का परिभाषा या कृष्ण का इंट्रोडक्शन उसी प्रकार हुआ है। कृष्ण का इंट्रोडक्शन किस रूप में हुआ है? अस्तिस्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प पशुनात्मतम अस्तिस्वस्ति अस्थिमत है। कौन है वो? कृष्ण कहाँ बैठे हैं? एक वृंदावरण्य में एक रत्न सिंहासन में बैठे हैं। अस्थिस्वस्तरुणी कराग्र, तरुणी मतलब गोपियाँ, गोपियों के कराग्र मतलब उनके उनके हाथों के अग्रभाग से क्या हो रहा है? वो पुष्पों का अभिषेक हो रहा है। वैसे कृष्ण का वर्णन या इंट्रोडक्शन कृष्ण करणामृत में विल्लमंगल ठाकुर कहते हैं कि इस बीइंग डन अभिषेक, पुष्पों का अभिषेक हो रहा है। वो भी कौन से पुष्प है? कुसुम पुष्प है, जिसे इधर वर्णन हुआ है कुसुमावली भी। कुसुमा मतलब अभिले कुसुमों का अभिषेक हो रहा है। गोपियाँ सोच रही है ये बहु सौभाग्य हमको कब प्राप्त होगा, जैसे बादलों को प्राप्त हो रहा है कृष्ण को अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, कृष्ण का छाता बनने का जो सौभाग्य इन बादलों को प्राप्त हो रहा है, और कृष्ण के और बादलों के बीच में जो उनका साक्य इतना दृढ़ता से है। क्यों दृढ़ता से है? क्योंकि इन दोनों का स्वभाव एक ही है। जब दो लोगों का स्वभाव एक होता है तो उनके अंदर मित्रता, उन दोनों के बीच में मित्रता गहरा हो जाता है, और ऐसा लगता है कि कृष्ण जो है वो उनका स्वभाव में और हमारे स्वभाव में बहुत अंतर, इससे मित्रता होगा कि नहीं, होगा तो कब होगा, इस प्रकार गोपियाँ स्मरण कर रही हैं। सार रूप में वर्णन किया जा रहा है कि इस श्लोक में सक्युर व्यधात, बादल कृष्ण को अपना मित्र मान रहा है। क्यों मान रहा है? चार कारणों की वजह से। एक शरीर का रंग एक है, दूसरा उनका वस्त्रों का रंग एक है, और तीसरा बादल भी गरजता है और कृष्ण भी बांसुरी बजाता है। वैसे देखा है बादल की गरजना और कृष्ण की बांसुरी में जो साउंड में क्वालिटी है बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी वो बादल सोच रहा है कृष्ण मेरा मित्र है, क्योंकि हम मैं भी आवाज़ करता हूँ, वो भी आवाज़ करते हैं। और चौथी बात क्या है? जो गर्मी से मुक्त कराने के लिए बादल जो है जिस प्रकार वो बारिश गिराता है और गर्मी को शांत करता है, उसी प्रकार भक्तों के हृदय में जो ताप है उसको शांत करने के लिए भगवान का जो शरीर है, शरीर से उत्पन्न हुआ जो मधुरिमा है, जो नेक्टर है, वो भक्तों के हृदय में विरह की ताप को शांत करने वाला है। इसलिए चार सिमिलैरिटीज़ हैं, किसमें? बादल में और कृष्ण में। इसकी वजह से दोनों के बीच में जो साख्य का रस को देखते हुए गोपियाँ अपने हृदय में शोक व्यक्त कर रही है। क्या शोक है? क्या फ़ायदा अपना जीने का, जो सेवा बादल को मिल रहा है वो हमको नहीं मिल रहा है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लिविंग, ऐसा सोच रही है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? नहीं, क्वेश्चन?